ஓம் நம சிவாய். டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shivam.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷாவஷ உபனிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ அத்வைதானந்தகிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
परंतु वास्तविक ये त्याग है ही नहीं, ये त्याग होता ही भी नहीं है. क्या ऊपर से भले आपने घर छोड़ा, परंतु तुम्हारे अंदर जो घर बैठा हुआ है उसको क्या करोगे? देखो, ये ध्यान रखो, न कोई वस्तु त्याज्य है न कोई वस्तु ग्राह्य है. ना कुछ छोड़ा जा रहा है और ना कुछ लिया जा रहा है. यही बात समझाने के लिए ये सूत्र है, तेन त्यक्तेन भुंजिता. समझ रहे ना? ये ऐसा श्लोक नहीं है. तेन त्यक्तेन भुंजिता का मतलब क्या होता है? त्याग का भोग. त्याग का भोग क्या होता है? त्याग का भोग मतलब होता है ना कुछ छोड़ा जाता है और ना कुछ लिया जाता है. समझ रहे ना? अब इस पर विचार चिंतन करना है. इसलिए तो मैं पहले कहता हूं, भाई मैं तो चिंतन करता हूं और मैं अपने लिए भी करता हूं. अपने साथ साथ आप लोगों का कल्याण होता है तो ये कामना तो हमारी होती ही है. इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजिता, तेन शब्द किस लिए दिया है? मैंने जो अभी तक समझाया इसमें आप लोग क्या समझे? अरे आसक्ति हो तब तो त्याग है भाई. हम वेदांती है, समझे ना? किसी को भी आप सिद्ध नहीं कर सकते और किसी को सिद्ध नहीं करेंगे तो हम कैसे मानेंगे? अर्थात जो अध्यास है, जो भाष्यमान वस्तु है, जो तुम कह रहे हो आसक्ति है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, देह है, नाम है, रूप है, गुण है, धर्म है, जाति है, आदि आदि जो तुम है कह रहे हो, समझे ना? मैंने अभी तक क्या बताया है? अरे तुम हो ही नहीं, जो कुछ है वो ईश्वर है. क्या तुम्हारी हड्डी ईश्वर है, तुम्हारा चमड़ी ईश्वर है, तुम्हारे अंदर मज्जा ईश्वर है? ये किससे बने? ईश्वर से बने या तुम्हारे मां बाप ने बनाए हैं? अन्न खाते हो कि नहीं खाते हो? क्या बना है? अब वो अन्न किसने बनाया है? मिट्टी ने, जल ने. मिट्टी जल किसकी है? ईश्वर की. और उसी अन्न से तुम्हारा शरीर बन रहा है, इसे हड्डी मांस जो सात धातु बन रहे हैं उसी का तो परिणाम है. तो क्या वो ईश्वर नहीं है? अरे अन्न भी ईश्वर है कि नहीं? अन्न को भी तो ब्रह्म कहा कि नहीं है? तो ब्रह्म ही तो क्या बन गया? तुम्हारा शरीर बना है ईश्वर, जो शरीर बना है इसलिए वो ब्रह्म को ईश्वर कहा जा रहा है. सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट का मतलब क्या होता है? एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा. ये श्रुतियां क्या ऐसा ही है क्या? अर्थात तुम्हारा बाल भी तुम्हारे नहीं हो, वो भी ईश्वर है. रोम रोम. यही व्याप्ति का अर्थ तो क्या होता है? व्याप्ति का अर्थ होता है ये सब ईश्वर स्वरूप ही हो जाना, ईश्वर ही हो जाना. और ये सब ईश्वर ही हो जाता है तो क्या होता है मालूम है? तुम्हारा मैंपना छूटता है कि नहीं छूटता है? मेरापन छूटता है कि नहीं छूटता है? क्या छूटा, बाधित हो गया कि नहीं है? जो कहते हैं कि मैं मनुष्य हूं, अब इस चिंतन से, इस आवाज से, इस शब्द के चिंतन से अब तुम्हारे अंदर क्या भाव आ गया, क्या तुम्हें बोध हो गया? शिवो हम ये जो कहते हो तो ये शिवो हम ये भाव किससे आएगा? ये इसके चिंतन से आएगा। और इस चिंतन से ये भाव आ जाएगा तो ये भाव से क्या हो जाएगा? ये भाव दो वस्तु करता है। क्या करता है? दो वस्तु का निर्माण करता है, त्याग और भोग। समझ रहे हैं? त्याग और भोग ये दो वस्तु का निर्माण करता है। ये आप समझोगे श्रवण करके, मनन करके, निधिध्यासन करके, मल विक्षेप आवरण इन दोषों को दूर करके। जब आपके अंदर ये समझदारी आएगी तो आप क्या देखोगे? हरिरेव जगत है ना, और जगदेव हरि, अर्थात ईश्वर संपूर्ण इस जगत को आप ईश्वर रूप से अनुभव करोगे कि नहीं करोगे? ईश्वर रूप से अनुभव करोगे तो आप जगत रूप से जो अनुभव कर रहे थे, जगत रूप से जो कह रहे थे, जन्मने वाला मरने वाला रूप जो कह रहे थे या मान रहे थे या समझ रहे थे, ये छूट गया कि नहीं छूट गया? श्रुति इधर संकेत कर रही है तीन शब्द से, समझ रहे ना? अर्थात ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत, ये जो पूर्वार्ध बता दिया है, इस पूरा पूर्वार्ध के द्वारा, अर्थात इसके चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा इसका तुम अनुभव करोगे या तुम्हारे अंदर श्रवण करने से भाव निर्माण होगा, उन भावों में आप डूब जाओगे तो डूबते डूबते आपकी बुद्धि चिंतन करते करते आपकी बुद्धि तदाकार बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बुद्धि में तदाकारता आएगी। तदाकारता का मतलब ईश्वर आकार आएगा। आप ये पहले आप इस कथा में आप सुन लिया कि भाई ये क्या है, सब ईश्वर है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये श्रुति जो बताती है वो हम श्रवण करके हम जब समझ देते हैं, ये आपके मन के अंदर आ गया, मनन करने से आपके अंदर जो होश तर्क वितर्क कुतर्क आदि क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे। और ये कही वस्तु, क्योंकि असत्य वस्तु का बाध हो जाएगा और सत्य वस्तु बनी रहेगी। क्या हो जाएगा? चिंतन से, चिंतन मनन का मतलब सत और असत, ये दोनों का ही विवेक है कि नहीं है? सत क्या है, असत क्या है, ये मनन से आपको पता चलेगा। जब मनन करोगे, चिंतन करोगे, तो आप सत असत में से असत को अलग करोगे। और क्या हो जाएगा? सत असत से सत अलग क्या हो जाएगा? आप सब चिंतन करोगे और सब चिंतन के द्वारा ये अनुभव करोगे कि जानने वाला और जिसको जाना जा रहा है, जिसको जाना जा रहा है वो मैं नहीं हो सकता, जानने वाला नहीं हो सकता है, और जो जानने वाला है वो जाननीय वस्तु नहीं हो सकता है। दोनों अलग अलग हो जाएंगे। देह को हम जानते हैं कि नहीं है? नाम रूप गुण धर्म आदि को जानते हो कि नहीं है? तो ये हमारे ज्ञान के विषय हो गए कि नहीं है? जिसको हम जानते हैं वो हमारे ज्ञान के विषय हो गए और हम उसके ज्ञाता हो गए। और ये हमेशा ये रहता है कि ज्ञाता से ज्ञेय भिन्न होता है और ज्ञेय से ज्ञाता भिन्न होता है, और ज्ञेय बदलता जाता है, हमारे ज्ञान का विषय बदलता जाता है। परंतु क्या हम बदलते हैं? हम बदलते हैं क्या? नहीं, हम नहीं बदलते, कभी भी नहीं। जागृति में नहीं, स्वप्न में नहीं, सुषुप्ति में नहीं, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। हम जागृति को भी जानते हैं, इसका मतलब है जागृति हम नहीं हैं और जागृति हमारी भी नहीं है। कहे जिसको हम जानेंगे वो हमारे से अलग हो जाएगा, और जो अलग हो जाएगा उसको श्रुतियां कहती है कि वो नाशवान है। आत्मभिन्नम सर्वम मिथ्या, ये श्रुति का उद्घोष है। आत्मा से भिन्न अर्थात तुम्हारे से भिन्न जो वस्तु होगी वो सर्व मिथ्या होगी, सब मिथ्या होगी। मिथ्या का मतलब क्या होता है? मिथ्या का मतलब दिखता तो है परंतु मिलता नहीं है। सत सद विलक्षणत्व मिथ्यात्वम, जो हो जिसको सद भी नहीं कहा जा सकता है और जिसको असद भी नहीं कहा जा सकता है, और सत सत जिसको सत और असद भी नहीं कहा जा सकता है उसको शास्त्र मिथ्या कहता है। इसलिए जितना भी ज्ञेय है तुम्हारे द्वारा वो सब क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। बुद्धि को तुम जानते हैं या जानते हो कि बुद्धि तुम्हें जानती है, ये कभी सोचा है? बुद्धि को हम जानते हैं या बुद्धि हमें जानती है? हम बुद्धि को प्रकाशित करते हैं या बुद्धि हमें प्रकाशित करती है? हम बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, बुद्धि हमें प्रकाशित नहीं कर सकती है, क्योंकि बुद्धि जड़ है। इसलिए तो हम कहते हैं कि ये बड़ा बुद्धिमान आदमी है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसका मतलब क्या? इसका मतलब बुद्धि अलग है और मैं अलग है। उस मैं के संबंध से बुद्धि के अंदर बोधपना आ गया, और उस बोध के कारण उस वस्तु को, उस पदार्थ को बुद्धि कहा गया है। है नहीं, परंतु चेतन के संबंध से इस देह को देह कहा गया है, हड्डी को हड्डी कहा गया है। इसका मतलब है कि ये सब वस्तु क्या है? मिथ्या है। समझ लेना, मिथ्या। जब ये बोध होता है मनन के द्वारा कि ये सत्य नहीं है, मैं ही सत्य हूं, सबका बाद मिथ्या वस्तु को कोई भी रखना नहीं चाहता है, ना कोई लेना चाहता है। जब लेना भी नहीं चाहता है तो क्या छोड़ना चाहेगा? अरे होती ही नहीं तो क्या लेंगे, क्या छोड़ेंगे? कोई वस्तु सिद्ध ही नहीं होती है, सब मिथ्या है। तो यहां तीन शब्द से श्रुति इधर संकेत कर रही है, ध्यान रखो। तीन शब्द का मतलब क्या होता है? उस ईश्वर के चिंतन के द्वारा, उस ईश्वर की सत्ता के द्वारा, उस ईश्वर की ज्ञान के द्वारा, उस ईश्वर की प्रियता के द्वारा क्या करो? इसका त्याग करो का मतलब बाध करो। क्या करो? बाध करो। वास्तविक वस्तु का बाध करने का नाम ही त्याग है। कौन सा त्याग? दो प्रकार का त्याग होता है, एक लौकिक त्याग होता है और एक आध्यात्मिक त्याग होता है। तुम्हारे उत्थान का कारण लौकिक त्याग नहीं होता है, तुम्हारे उत्थान का कारण आध्यात्मिक त्याग होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तुम्हारा उद्धार कब होगा? बाहर तुम लंगा भी घूमे हो, जटा भी बढ़ा दिए हो, अन्न पानी भी छोड़ दिया हो, तो क्या तुम्हारा उद्धार होगा? अरे कतई नहीं है। समझ, ये त्याग वो लौकिक त्याग है। लौकिक त्याग से मुक्ति नहीं मिलती है, ध्यान रखो। तुम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हो, कितना भी लौकिक त्याग करो। तुम उस त्याग से बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हो, ना कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो, ना वासना बंधन से, ना संस्कार बंधन से, ना अविद्या बंधन से। ये सब बंध है, अविद्या से लेकर के इस जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है वो सब बंधन है। इस लौकिक त्याग से क्या भोग होगा, क्या भोगा जाएगा, परंतु इस त्याग में भोग भी है। उस ईश्वर के चिंतन के द्वारा इस संसार की सत्ता का, संसार की पदार्थ का क्या करना है, बाध करना है मिथ्या कर करके। इसलिए तो ये स्मृति यही बता रही है, ईश्वर की व्याप्ति को जानो चिंतन करके, और उससे इस जो उस ईश्वर से अलग वस्तु है उसका क्या करो, पहले बाध करो। एक बाध होता है, एक निषेध होता है, बाध में और निषेध में अंतर है, समझ लीजिए। पहला श्रुति बाध करती है, क्या करती है, बाध करती है और फिर निषेध करती है। अब बाध तो हमारे बुद्धि से किया जाता है, मनन से किया जाता है, क्या बाध जो है हमारे मन से बुद्धि से किया जाता है, क्योंकि बुद्धि में ये बोध हो गया कि ये सत्य नहीं है, मैं सत्य हूं और ये मिथ्या है। तो मन क्या करता है, बुद्धि पहले जान लेती है, विवेक करके, विवेक बुद्धि में होता है, समझना, फिर मन उसको क्या, उसके अंदर जो मेरापन था या जो मैंपन था उसको छोड़ देता है, क्या वो त्याग है। ये आध्यात्मिक त्याग की बात बता रहा हूं मैं, अलौकिक त्याग की भी बात करूंगा आज नहीं करूंगा, कल करूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो चिंतन है, इस चिंतन के द्वारा सभी में ईश्वर भाव तुम्हारे अंदर निर्माण हो जाएगा, तो संसार भाव तुम्हारा बाधित हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। आप अनुभव करोगे अरे कुछ नहीं, ये तो सब झूठा है। जैसा श्मशान में जाते हैं कि नहीं लोग, तो श्मशान में क्या अनुभव होता है, हाँ, संसार सत्य का अनुभव होता है। आ कुछ नहीं जी, अभी 10 मिनट पहले ही मैंने बात करा किए थी, बताओ क्या है, सब झूठा है, है? परंतु कब तक, जब तक श्मशान की तरह आपका मुंह है ना, उधर जब तक चल रहे तब तक, और वहां से जैसे उसको पीट कर दिए और घर के तरफ दृष्टि कर दी, मुख कर दिया, तो क्या सत लगता है। ये त्याग है, इसको त्याग करेंगे क्या, संसार का त्याग ऐसा ही त्याग है, क्या है, त्याग तो है परंतु त्याग के साथ साथ घर की आसक्ति नहीं छूटी है, कुछ छूटा है क्या, कुछ नहीं छूटा है। तो लौकिक त्याग तो ऐसा ही, एक महात्मा मुझे कलकत्ता में मिले थे, पहले घर के बहुत श्रीमंत थे बिचारे, और फिर महात्मा बन गए तो बड़े परेशान हो गए, कहा कि महाराज क्या बताएं, मैं करीब 45 साल से साधु बन गया, सन्यासी बन गया हूं। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, पर कहा महाराज बहुत परेशान हो। तो हमने कहा भाई परेशानी क्या चीज है, कहा कि महाराज खाने के लिए बराबर मिलता नहीं है, कोई आश्रम में मेरे को जा कोई रखता नहीं है, रहने के लिए ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कहा बड़ा परेशान हूं मैं, बीमार पड़ता हूं तो दवाई के लिए पैसा नहीं है, तो परेशानी तो है। हमने कहा बात तो सही है भाई, कहा कि महाराज ये सब पहले बता दिया, और फिर कहता है महाराज मेरे घर में पत्नी भी इतनी अच्छी थी, मेरी इतनी अच्छी थी, बहुत सुंदर दिखने के लिए थी और बड़ी सेवा भावी भी थी, परंतु क्या करे महाराज, मेरा ही दिमाग खराब हो गया, मेरी मूर्खता है कि मैंने छोड़ दिया। बच्चे भी अच्छे थे और इतनी बढ़िया दुकान चल रही थी, रोज का पैसा हाथ में आता था, कोई कमी नहीं थी। और पता नहीं बाबा के चक्कर में गया और मैंने घर छोड़ दिया। मुझे बड़ी हंसी आई, हमने कहा मूर्ख कहकर भाग्या से, हमने आज तुमने छोड़ा है क्या, तुमने संन्यास लिया है कहा, क्यों संन्यास का पाखंड कर रहे हो, क्यों चाक का पाखंड बता रहे हो। ये पाखंड जो होता है ना, ये त्याग नहीं, त्याग का पाखंड है, त्याग का पाखंड ही दुख का कारण है। इसलिए यहां शास्त्रों ने या श्रुतियों ने, वेदों ने इस त्याग का कोई महत्व नहीं दिया है, समझना। ये त्याग करे या त्याग न करे, इसका कोई अर्थ नहीं है। त्याग होना चाहिए तो आध्यात्मिक त्याग होना चाहिए, बात समानाधिकरण जिसको कहते हैं। वेदांत शास्त्र में इन वस्तुओं को बाद समानाधिकरण कहा गया है, मुख्य समानाधिकरण और बाद समानाधिकरण, ये दो अधिकरण हैं, समझ। अर्थात अधिकरण का मतलब होता है अंदर के साधन, अधि का मतलब होता है अंदर, और करण का अर्थ होता है साधन। तुम्हें आनंद का भोग करना है, क्या अमृतत्व का, अमृतत्व को प्राप्त करना है तुम्हें, तो किससे करोगे? बाहर की वस्तु से तुम्हें आनंद मिलेगा? बाहर की कितनी भी वस्तुएं छोड़ोगे तो तुम्हें कोई आनंद नहीं मिलने वाला, दुख ही मिलने वाला, पछतावा ही आने वाला। इसलिए ऐसे बहुत से सन्यासी पछताते हैं कि क्या करें महाराज, बड़ी हमारी गलती हो गई है। उनको अकल तब आती है जब कुछ नहीं कर सकते, जब बुढ़े होते अंगम गलितम पलितम मुंडम, जब ऐसा होता है तब उसको कहता है कि वास्तविक मेरे को जो करना था वो नहीं कर पाए, और अब क्या करें, पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता है। इसलिए यहां श्रुति उस त्याग के तरफ दृष्टि ले जाने के लिए तीन शब्द प्रयोग कर रही है। तीन का मतलब होता है पहले ईश्वर का क्या करो, मनन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा भाव निर्माण करो, और चिंतने चिंतने तद्रूपता, फिर उसके अंदर तद्रूपता लाओ। क्या लाओ? तद्रूपता लाओ। जब इस भाव के द्वारा जो बाध होगा, भाव क्या करता है, संसार भाव को परमात्मा भाव बाधित कर देता है। जब परमात्मा भाव सत्य होता है, या इस भाव में परमात्मा ही सत्य है ऐसा जब निश्चय होता है, तो संसार का झूठपना अपने आप ही होता है, तुम्हें करना नहीं पड़ता है। इसलिए ये त्याग अभिमान निर्माण नहीं करता है, ये ध्यान रखो। ये त्याग अभिमान निर्माण करता है, तुम्हें परिच्छिन्न बनाता है, छोटा बनाता है, आज छोटा बनाता है तो दुखी कर देता है। परंतु ये जो त्याग है ना, ये त्याग तुम्हारे अंदर अभिमान निर्माण नहीं करता है, क्योंकि वो तुम्हें पता ही नहीं लगता है ये कैसा छूट गया। तो अभिमान तब तो तब होगा ना कि तुम करोगे तब, और ये तुम्हारा जब परमात्मा को सत्य बनाने की जरूरत है, संसार को झूठा करने की कतई जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, संसार झूठ हो तब तो झूठ होगा। अरे श्रुति तो कहती है कि ये सब ब्रह्म ही है, झूठ क्या करना है फिर? संसार भाव को, समझ रहे ना, किसको झूठ करना है? जो तुम्हारे अंदर परमा संसार भाव जो सत्य रूप से बैठा हुआ है, देह को ही सत्य मान रहे हो, नाम रूप गुण धर्म जाति वर्ण आश्रम देश काल आदि को ही जो सत्य मान रहे हैं, तुम्हें कोई पूछता है तो कहते महाराज कल का मेरा बर्थडे है, महाराज जरूर आशीर्वाद देगा, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। मैंने एक को पूछा था, वो हमारे मित्र थे और वो अपना बर्थडे बना रहे थे। हमने कहा, मुझे थोड़ा सा ये लगा, हमने कहा स्वामी जी आप ये बताओ कि बर्थडे बना रहे हो, ये सत्य बर्थडे है कि झूठ बर्थडे है? नीतीश श्याम दो ही थे। कहा कि ये क्या बात करते हो, हा? मेरा सही जन्म हुआ था उस दिन, इसलिए ये मेरा बर्थडे बिल्कुल सत्य है। हमने कहा कैसा कहते हो? कहा कि मेरे को मालूम है। हमने कहा क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? एक के ऊपर एक झूठ बोलते जा रहे हो, तुम्हें मालूम है तुम्हारा बर्थडे क्या है? तो किसी को भी नहीं मालूम, किसी ने बता दिया है ना, मां ने बता दिया या बाप ने बता दिया, पड़ोसी ने बता दिया, डॉक्टर ने बता दिया या नर्स ने बता दिया, और तुमने मान लिया। ये माना हुआ बर्थडे है कि वास्तविक है? अरे तुम अपने जन्म की ही सिद्धि नहीं कर सकते हो तो मृत्यु की सिद्धि, मृत्यु का भय किस लिए? और यही तो संसार है। संसार क्या चीज है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बार बार जन्मना बार बार मरना। समझना, ये जन्म और मृत्यु यही संसार है, और यही भाव आपके अंदर सत्य रूप से बैठा हुआ है। श्रुति इसके तरफ संकेत कर रही है, इसका त्याग करना है। किसका त्याग करना है? अरे ये वस्तु का त्याग नहीं, त्याग का पाखंड है। शास्त्र इन त्याग की निंदा करता है, समझ रही ना? त्याग करना है, ये आध्यात्मिक त्याग है, पारमार्थिक त्याग है और वास्तविक है, क्योंकि इसी त्याग का आनंद हो सकता है। दूसरे त्याग में आनंद नहीं है, दुख है। जो दुख रूप त्याग है वो क्या त्याग है? नहीं। यहां परमात्मा का सत्य का बोध हो जाए और संसार का झूठ के रूप में मिथ्या रूप से बाद हो जाए, ये आनंद है। और इस आनंद का भोग तेन त्यक्तेन मुंजिता, ये श्रुति कह रही है कि उससे त्याग करे और फिर भोग करे। भोग का मतलब आनंद। और ये त्याग हो जाएगा, संसार भाव बाधित हो जाएगा, तो परमात्मा भाव का, परमात्मा भाव तो आनंद ही है, उस आनंद का फिर आनंदित हो जाओ। इसको जीवन मुक्ति कहा जाता है, जीवन मुक्ति। ये जीवन मुक्ति का आनंद है। तो आज यही विराम कर लेते हैं, क्योंकि दो मिनट ज्यादा हो गए और फिर आप स्वाध्याय भी करना है। इसलिए तेन त्यक्ति न भुंजिता मा गृध कस्य स्विद्धनम, इस पर और भी दो दिन चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।